एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपना कुछ शुरू करना।
बिल्कुल, स्टार्टअप्स की दुनिया है ना।
हाँ।
सुनने में बड़ी रोमांचक लगती है।
हाँ, लगती तो है,
लेकिन इसके पीछे असल में है क्या? क्या ये बस किस्मत का खेल है, या कोई बड़ा आइडिया मिल जाना, या फिर बहुत सारा रिस्क लेना?
यही सवाल है, और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे पॉल वेस्टर्ड की किताब एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए।
हाँ, ये किताब कहती है कि उद्यमी बनना, मतलब एंटरप्रेन्योर बनना, कोई जादू की छड़ी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, एक डिसिप्लिन है।
और ये जानना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि भाई उनमें जरूर कोई खास बात होगी।
हाँ, कि वो पैदाइशी अलग है।
हाँ, और वेस्टहेड इसी सोच को, इसी मिथक को तोड़ते हैं। उनकी किताब एक तरह से वो ग्लैमर का पर्दा हटाती है ना?
सही कहा, और दिखाती है कि इसके पीछे एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि उस प्रक्रिया को समझें, उस सिस्टम को डीकोड करें
कि कैसे एक आइडिया एक कामयाब बिजनेस बनता है।
बिल्कुल।
तो फिर शुरुआत लेखक से ही करते हैं, पॉल वेस्टहेड। ये जानना जरूरी है कि ये हैं कौन और इनका नजरिया क्यों अलग है।
हाँ बिल्कुल। देखिए, पॉल वेस्टहेड कोई कोई मोटिवेशनल गुरु टाइप नहीं है, ना ही वो सिर्फ अपनी कहानी सुना रहे हैं।
अच्छा,
वो एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च के फील्ड में एक बहुत ही सम्मानित, मतलब सीरियस एकेडमिक हैं, विशेषज्ञ हैं। डरहम वॉरविक जैसे बड़े नामी बिजनेस स्कूलों में प्रोफेसर रहे हैं, और उनका काम किससे कहानियों पर आधारित नहीं है।
तो फिर किस पर है?
सालों की मेहनत, कठोर शोध, हजारों स्टडीज, केस स्टडीज, डेटा पर आधारित है सब कुछ।
अच्छा,
यही बात शायद उनके नज़रिए को खास बनाती है ना? जी हाँ। वो क्या करते हैं कि अकादमिक दुनिया की जो गहरी समझ है और असल दुनिया की जो ज़रूरतें हैं,
हाँ
उनके बीच एक पुल बनाते हैं।
जी,
वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या काम करता है,
तो
वो ये भी समझाते हैं कि क्यों काम करता है,
ओ
उसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं।
ये तो बढ़िया है, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का मेल।
बिल्कुल। और उनका अनुभव सिर्फ क्लासरूम या किताबों तक ही नहीं है,
जी
उन्होंने असल में उद्यमियों के साथ, इनक्यूबेटरों के साथ, पॉलिसी बनाने वालों के साथ भी काम किया है,
अच्छा,
तो जमीनी हकीकत भी जानते हैं।
हाँ, तो उनकी बातों में वो थ्योरी वाली गहराई भी है और प्रैक्टिकल समझ भी।
और ये हमें सुनी सुनाई बातों से आगे ले जाता है,
अच्छा,
सबूतों पर आधारित समझ देता है।
चलिए, ये तो हुई लेखक की बात, अब जरा किताब पर आते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो ये किताब है क्या, एक लाइन में?
एक लाइन में मुश्किल है, पर कह सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी यात्रा के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है, तक और यहां तक कि उससे बाहर निकलने यानी एग्जिट स्ट्रैटेजी तक, सब कुछ।
वाह, तो पूरा सफर कवर करती है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे अहम संदेश क्या है?
सबसे बड़ा और बुनियादी संदेश वो यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये एक व्यवस्थित, सीखा जा सकने वाला अनुशासन है, एक डिसिप्लिन। वेस्टहेड इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, मिथकों को तोड़ते हैं, और इसे ऐसे पेश करते हैं कि कोई भी समझ सके, स्टेप्स में, तरीकों में, टूल्स में।
मतलब ये उस आम सोच को चुनौती देती है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कोई जबरदस्त, दुनिया हिला देने वाला आइडिया ले आओ।
हाँ, या फिर बहुत बड़े बड़े रिस्क लो।
हाँ,
बिल्कुल। किताब इसके बजाय वो कहती है कि मौकों को पहचानो, ध्यान से प्लानिंग करो, तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, उनका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करो, और रिस्क लो, पर सोच समझ कर मैनेज करो उसे, अंधाधुंध नहीं।
तो ये किताब किसके लिए है? क्या सिर्फ उनके लिए जो बड़ा स्टार्टअप बनाना चाहते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो ग्लैमर से परे जाकर एक टिकाऊ बिजनेस बनाने के लिए मेहनत करने को तैयार है। वो चाहे स्टूडेंट हो, या कहीं नौकरी कर रहा हो, या अपना छोटा मोटा काम कर रहा हो, कोई भी जो उत्सुक है।
ठीक है, तो अब जरा इसके कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई में चलते हैं। किताब तो काफी बड़ी है, सारे अध्याय तो नहीं ले सकते,
हाँ मुश्किल है।
लेकिन कुछ सबसे जरूरी विचारों पर बात करते हैं। पहला, ये एंटरप्रायर वाली सोच, ये माइंडसेट आखिर है क्या, और असली मौकों को पहचानते कैसे हैं? ये पहला सवाल है।
बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वेस्टहेड सबसे पहले तो उस ग्रेट पर्सन थ्योरी को खारिज करते हैं, मतलब ये सोच कि एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, उनमें कोई खास जमजात गुण होते हैं।
अच्छा, तो फिर वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि ये असल में एक व्यवहार है, सोचने का एक तरीका है। यहाँ पर किर्ज़मर की एक बात आती है, एंट्रप्रेन्योरियल अलर्टनेस।
एंट्रप्रेन्योरियल अलर्टनेस, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है वो क्षमता जिससे कुछ लोग उन मौकों को देख लेते हैं, उन अवसरों को भांप लेते हैं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मिस कर जाते हैं।
मतलब दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना, जैसे जहां दूसरों को सिर्फ प्रॉब्लम दिख रही है वहां कोई सोल्यूशन देख लेना।
हाँ बिल्कुल, या जहां दूसरों को कोई कमी दिख रही है वहां एक अवसर तलाश लेना। और वेस्टर्न हेड जोर देते हैं कि ये जो देखने का नजरिया है ना, इसे विकसित किया जा सकता है।
अच्छा, ये सीखा जा सकता है।
हाँ, लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, हर आइडिया जो आपके दिमाग में आता है वो एक अच्छा बिजनेस अवसर नहीं होता।
हाँ ये तो है।
यहीं पर आइडिया और अवसर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
ये क्या फर्क है? सुनने में तो काफी मिलते जुलते लगते हैं।
देखिए, आइडिया तो कुछ भी हो सकता है ना, एक नया प्रोडक्ट सोचा, किसी ऐप का ख्याल आया, कुछ भी। लेकिन अवसर क्या है? अवसर वो आइडिया है जो किसी असली ग्राहक की जरूरत या समस्या को हल करता हो, जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार हों, जो टिकाऊ हो, मतलब लंबा चल सके, और जिसके लिए बाजार में सही समय हो।
मतलब टाइमिंग भी जरूरी है।
बहुत जरूरी। वेस्ट हेड कहते हैं कि उद्यमी का पहला काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है।
तो फिर क्या है?
पहला काम है ये पक्का करना कि वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकला है वो वाकई एक असली प्रॉब्लम है भी या नहीं, और क्या लोग सच में उसका समाधान चाहते हैं।
अच्छा, यहीं पे शायद वो लीन स्टार्टअप वाला फंडा काम आता है जिसका जिक्र आजकल बहुत होता है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यानी बड़ा पैसा और समय लगाने से पहले छोटे रूप में अपने आइडिया को टेस्ट करो। इसे कहते हैं मार्केट वैलिडेशन।
मार्केट वैलिडेशन मतलब
अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलो, अपने जो संभावित ग्राहक हैं उनसे बात करो, समझो कि उनकी असली जरूरतें क्या हैं, और फिर एक MVP।
MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट।
हाँ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी अपने प्रोडक्ट का सबसे सरल, सबसे बेसिक रूप बनाकर उसे टेस्ट करो, देखो लोगों का क्या रिएक्शन है।
इससे फायदा?
फायदा ये कि आप अंदाजों पर, अपनी सोच पर बिजनेस नहीं बनाते हैं, आप असली फीडबैक पर बनाते हो। ये रिस्क कम करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है।
सही बात है। अच्छा, तो मान लीजिए हमने एक असली अवसर पहचान लिया, उसे वैलिडेट भी कर लिया जैसा आपने कहा, अगला कदम आप क्या करें? शायद प्लानिंग और रिसोर्स जुटाना।
हाँ, और यहाँ भी वेस्टहेड का नजरिया थोड़ा पारंपरिक सोच से हटकर है। वो बिजनेस प्लान को सिर्फ वो भारी भरकम डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं जो निवेशकों को दिखाना होता है।
तो फिर क्या मानते हैं?
वो इसे एक सोचने का उपकरण कहते हैं, अ टूल फॉर थिंकिंग। प्लान बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि वो आपको मजबूर करती है अपने बिजनेस के हर पहलू के बारे में सोचने पर। आपके ग्राहक कौन है? आप उन्हें क्या खास वैल्यू दे रहे हैं? पैसा कैसे कमाएंगे? लागतें क्या होंगी? सब कुछ।
लेकिन ये प्लान बनाना तो बड़ा मुश्किल और बोरिंग काम लगता है कई बार।
हाँ लगता है, इसीलिए आजकल एक चीज का जिक्र काफी होता है, बिजनेस मॉडल कैनवस। सुना है?
हाँ सुना तो है, ये क्या चीज है असल में?
ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। असल में एक पेज का नक्शा समझ लीजिए इसे।
एक पेज का नक्शा?
हाँ, जो आपके पूरे बिजनेस मॉडल को दिखाता है। आप किन ग्राहकों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें क्या वैल्यू दे रहे हैं, उन तक पहुंचेंगे कैसे, पैसा कैसे कमाएंगे, मुख्य खर्चे क्या होंगे, सब कुछ एक नज़र में, एक ही पेज पर।
वाह, ये तो काम की चीज लगती है।
है, ये आपको पूरी तस्वीर साफ दिखाता है और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना भी आसान बनाता है। ये प्लानिंग को ज्यादा डायनामिक बनाता है, कम बोझिल।
समझ गई। अच्छा, और संसाधन जुटाने की बात, पैसा वो कहाँ से आएगा? क्या हमेशा बड़े इन्वेस्टर्स के पास ही जाना पड़ता है?
वेस्टर्ड यहाँ भी एक अलग एंगल देते हैं, वो बूटस्ट्रैपिंग के दर्शन से शुरुआत करते हैं।
बूटस्ट्रैपिंग मतलब
कोशिश करो कि कम से कम बाहरी पैसे से काम चलाओ, अपने ही संसाधनों से, अपनी कमाई से बिजनेस को आगे बढ़ाओ।
अच्छा, इसका क्या फायदा?
फायदा ये कि नियंत्रण आपके हाथ में रहता है और आपको सोच समझकर खर्च करने की आदत पड़ती है। हाँ, जरूरत पड़ने पर फंडिंग के रास्ते तो हैं ही, दोस्तों परिवार से सीड फंडिंग, फिर एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स। लेकिन किताब का जोर सही समय पर सही तरह की फंडिंग ढूंढने पर है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने पर नहीं।
और संसाधन का मतलब सिर्फ पैसा तो नहीं होता है ना, टीम कितनी जरूरी है?
अरे बहुत ज्यादा। वेस्टर्ड साफ कहते हैं कि टीम की क्वालिटी वो अक्सर बिजनेस की सफलता या असफलता तय कर देती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है।
क्यों?
क्योंकि एक अच्छी टीम में अलग अलग तरह के हुनर होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी में माहिर है तो कोई मार्केटिंग में, कोई सेल्स में, है ना?
हाँ।
एक साझा नजरिया होना चाहिए और सबसे जरूरी, आपस में केमिस्ट्री, तालमेल बैठना चाहिए. मेंटर्स का होना, सलाहकारों का नेटवर्क बनाना, ये भी उतना ही जरूरी है. संक्षेप में कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप एक टीम गेम है, अकेला खेला नहीं.
ये बात मुझे काफी अच्छी लगी कि वेस्टहेड संसाधनशीलता यानी रिसोर्सफुलनेस को सिर्फ संसाधनों यानी रिसोर्सेस से ज्यादा महत्व देते हैं.
हाँ,
मतलब कम में ज्यादा कैसे करें, जुगाड़ कैसे लगाएं.
बिल्कुल, ये भारतीय संदर्भ में तो बहुत ही फिट बैठता है. इसे वेस्टहेड कहते हैं रिसोर्स ऑर्केस्ट्रेशन.
रिसोर्स ऑर्केस्ट्रेशन,
हाँ, मतलब आपके पास जो भी सीमित साधन है उन्हें आप कितने क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करके बेहतरीन नतीजा निकालते हैं. कई बार तो बाधाएं आपको ज्यादा क्रिएटिव बना देती हैं, है ना?
सही कहा. अच्छा, तो हमने माइंडसेट और अवसर की बात की, प्लानिंग और रिसोर्स जुटाने के. अब आते हैं तीसरे और शायद आखिरी मुख्य थीम पर, वो है रिस्क मैनेजमेंट और बदलते हालात के हिसाब से ढलना. एंटरप्रेन्योर का मतलब ही होता है बड़ा रिस्क लेने वाला, यही इमेज है ना दिमाग में?
हाँ बिल्कुल, यही इमेज है. और वेस्टहेड इसी इमेज को तोड़ते हैं. वो कहते हैं कि सफल एंटरप्रेन्योर वो रिस्क के पुजारी नहीं होते, वो रिस्क के प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं रिस्क के.
अच्छा, मतलब
वो जुआ नहीं खेलते, वो सोचे समझे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं.
पर कैसे कैसे लेते हैं कैलकुलेटेड रिस्क?
वही बात जो हमने पहले की, अपनी मान्यताओं को टेस्ट करके, छोटे स्तर पर शुरुआत करके, MVP बनाकर, ग्राहकों से लगातार सीखकर और जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदलने को तैयार रहकर, वो धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से अपने वेंचर का रिस्क कम करते जाते हैं.
मतलब प्लान बनाना तो जरूरी है पर उस प्लान से चिपक कर बैठना नहीं.
नहीं, इसलिए प्लान और एडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलनशीलता, इनके बीच एक बैलेंस साधना पड़ता है. बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता है, नई चुनौतियां आती हैं. टीम बड़ी करना, प्रोसेस बनाना, कैश फ्लो मैनेज करना, इन सबके लिए तैयार रहना होता है. यहां तक कि बिजनेस से बाहर निकलना यानी एग्जिट लेना, वो भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है. वो विफलता का संकेत नहीं है.
वाह, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप को देखने का एक बिल्कुल नया और ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा जमीनी तरीका लग रहा है.
है, बिल्कुल है.
अगर हम इस पूरी चर्चा के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समेटें तो क्या होंगे वो 3-4 सबसे बड़े संदेश?
मेरे हिसाब से पहला, एंटरप्रेन्योरशिप कोई रहस्य नहीं, एक अनुशासन है. इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, ये सबसे बुनियादी बात है.
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, अवसर जो है वो सिर्फ एक आइडिया से कहीं बढ़कर है. असली जरूरत पहचानना और उसे वैलिडेट करना, ये किसी भी फैंसी आइडिया से ज्यादा जरूरी है.
तीसरा,
स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट, ना कि अंधाधुन जुआ. एंटरप्रेन्योर्स रिस्क कम करने के तरीके खोजते हैं, ना कि बेवजह उसे गले लगाते हैं.
और चौथा,
प्लान बनाओ पर बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो. प्लानिंग दिशा के लिए है, पत्थर की लकीर नहीं. बाजार से सीखना और उसके हिसाब से ढलना बहुत जरूरी है.
मैं इसमें एक और जोड़ना चाहूंगी जो मुझे खास तौर पर पसंद आया, संसाधनशीलता अक्सर संसाधनों से ज्यादा कीमती होती है.
हाँ बिल्कुल,
कम में कमाल करना, क्रिएटिव तरीके खोजना, ये तो हम भारतीय अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही हैं, जिसे हम जुगाड़ कहते हैं.
हाँ.
वेस्टहेड उसे बाकायदा एक जरूरी एंटरप्रेन्योर स्किल मानते हैं, जैसे कम बजट में मार्केटिंग के अनोखे तरीके ढूंढना या कम लागत में प्रोटोटाइप बना लेना.
सही, और वो अवसर पहचानने वाली बात भी. सोचिए भारत में कितनी ही स्थानीय समस्याएं हैं, कितनी जरूरतें हैं जिन्हें हल करके बिजनेस बनाए जा सकते हैं, बस वो अलर्टनेस चाहिए.
बिल्कुल, किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे वेस्टहेड का ये कहना कि सफल उद्यमी अनोखे व्यक्तित्व लक्षणों से नहीं बल्कि अवसरों को पहचानने और उन्हें अमल में लाने की प्रक्रिया के प्रति अनुशासित प्रतिबद्धता से परिभाषित होते हैं.
हाँ, ये कितनी कितनी उम्मीद जगाने वाली बात है ना?
है तो, मतलब सफलता आपकी पैदाइशी काबिलियत से ज्यादा आपकी मेहनत, आपके तरीके, आपकी लगन पर निर्भर करती है. कोई भी कोशिश कर सकता है.
और ये वाला विचार देखिए, आइडिया शुरुआती बिंदु है लेकिन अवसर वो आइडिया है जिसे बाजार की कसौटी पर सख्ती से परखा गया हो. उद्यमी का पहला काम प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि समस्या को मान्य करना है.
ये बार 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 ग्राहक पर फोकस करने की याद दिलाता है, उसकी जरूरत पर. पहले प्रॉब्लम समझो फिर सोल्यूशन बनाओ, वरना सब बेकार.
सही. एक और सुनिए, बिजनेस प्लान सोचने का एक उपकरण है, पत्थर में लिखी भविष्यवाणी नहीं. ये आपको एक अनिश्चित भविष्य के लिए तैयार करता है.
ये प्लानिंग और लचीलेपन के उस संतुलन को कितनी खूबसूरती से बताता है। प्लान एक मैप की तरह है, कोई फिक्स रास्ता नहीं।
ये सारे विचार ये एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा वास्तविक बनाते हैं, ज्यादा करने लायक बनाते हैं, हवा में उड़ने वाले आइडिया से निकालकर जमीन पर ले आते हैं।
तो फिर इन सब विचारों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है, आम लोग इन्हें कैसे अपना सकते हैं?
देखिए, जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो ये किताब एक तरह का फ्रेमवर्क देती है, एक चेकलिस्ट जैसी।
अच्छा, कैसे?
भाई, अवसर कैसे परखें, बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे इस्तेमाल करें, शुरुआत में बूटस्ट्रैप कैसे करें, ये सब कदम उठाए जा सकते हैं।
और जो लोग पहले से अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए?
वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए, मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जैसे वो CAC और LTV की बात है।
CALTV,
हाँ,
कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और लाइफ टाइम वैल्यू।
हाँ, मतलब एक ग्राहक को पाने में कितना खर्च हुआ और वो अपनी पूरी जिंदगी में आपको कितना बिजनेस देगा, ये समझना। और आगे की ग्रोथ प्लान करने के लिए इन सब तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, जिन्हें एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, वो भी कंपनी के अंदर नए आइडियाज को इसी तरह सोच समझ कर पेश कर सकते हैं, छोटे प्रयोग कर सकते हैं।
मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव शायद सोच में आता है। अच्छा। मानसिकता में।
कैसे?
वो मुझे 1 करोड़ों का आइडिया चाहिए ये सोचने के बजाय ये सोचना शुरू करना कि मुझे ऐसी कौन सी समस्या दिख रही है जिसे मैं हल कर सकती हूँ और जिसके समाधान के लिए लोग पैसे देने को तैयार होंगे।
हाँ, बिल्कुल।
ये सवाल पूछना शुरू करना।
हाँ।
ये हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है, ज्यादा जिज्ञासु, है ना?
एकदम सही। तो अंत में पॉल वेस्टहेड की एंटरप्रेन्योरशिप से सबसे मूल्यवान सबक क्या रहा आपके लिए?
मेरे लिए तो यही कि इसने पूरी प्रक्रिया को जैसे खोल कर रख दिया, डीमिस्टिफाई कर दिया। ये दिखाया कि बिजनेस बनाना कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक हुनर है जिसे अनुशासन से, लगातार सीखने से और एक सोची समझी प्रक्रिया से साधा जा सकता है।
और मेरे लिए सबसे खास बात रही इसका सबूत आधारित नजरिया, एविडेंस बेस्ड अप्रोच। ये जो आजकल इतना शोर है, इतने मिथक है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, ये उन सबको हटाकर एक साफ भरोसेमंद ढांचा देता है। ये अकादमिक रूप से मजबूत भी है और पूरी तरह प्रैक्टिकल भी। और ये जानने से ना एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, इसे सीखा जा सकता है, ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि उद्यमशीलता जादू नहीं है बल्कि मेहनत, समझदारी और सही प्रक्रिया का नतीजा है।
सही कहा।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं, क्या एंटरप्रेन्योरशिप वाकई पूरी तरह सिखाई जा सकती है जैसा वेस्टहेड तर्क देते हैं, या इसमें अब भी कुछ ऐसा है जो सिखाया नहीं जा सकता, कोई अंदरूनी चिंगारी, कोई एक्स फैक्टर जिसकी जरूरत होती ही है?
अच्छा सवाल है।
ये किताब इस बहस को कहां तक ले जाती है, इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।